के साथ प्ले करने की बात है, जज्बा जो है ना अपने अंदर, वो कभी भी यू नो स्पोर्ट्स और किसी गेम को आप उसका ऑनेस्ट उसको ऑनर देना चाहे ना, तो आप ये जेलसी और वो जीत जाएगा तो क्या होगा, ये तो मतलब आई नहीं सकता आपके अंदर कभी।
बहुत शुक्रिया हैरी जी, सर अब थोड़ा सा बताइएगा
जी। 228 से लेकर $1,000 से भी आजकल ज्यादा बचते हैं, अगर हमसे मशवरा करने के बाद हम आपका जो पूरा का पूरा मॉर्गेज को रिव्यू करके दोबारा से कंसोलिडेट करें आपके कर्जे, और कभी कभी तो अपना माजिद भाई और अल्फा जी कर्जे ना भी हो आपके पास, अगर आपकी मॉर्गेज ही सही प्रोडक्ट नहीं है आपके पास तो भी आप सेविंग कर सकते हो। अभी अगले 1-1.5 साल के अंदर 2.2 मिलियन कैनेडियंस का जो है मॉर्गेज का रिन्यूअल आने वाला है, तो आप भी बशर्ता उन्हीं में से हैं, तो आप प्लीज हमसे अपनी मॉर्गेज के रिन्यूअल को डिस्कस करें, या फिर आई वुड से कि आप उसका इंतजार भी मत करें कि जब रिन्यूअल आएगा तब बात करेंगे, आप अभी डिस्कस करें और देखें कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारे अपने कैनेडियंस को वी लैंडिंग में जाना पड़ा, प्राइवेट मॉर्गेज में जाना पड़ा, और उस समय कुछ हालात ऐसे थे कि आपकी इनकम प्रूवेबल नहीं है, कि आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है, या फिर कोविड की वजह से आपकी इनकम, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उनकी इनकम इतनी नहीं थी, और अगर आपने सर्फ ले लिया तो किस तरीके से उसको लैंडर देखता है, या फिर आपने जो डेफर्ड पेमेंट कर ली थी मॉर्गेज की वो आपको बॉदर करती थी। सो इन सब जितनी भी मुश्किलात थी या जितने भी जो भी वजह से आप अगर बी लैंडिंग में, प्राइवेट लैंडिंग में या हायर इंटरेस्ट रेट पे अगर चले गए थे, तो दिस इज द टाइम। अभी हमारे पास 4.5% के आसपास जो है वो 5 साल का रेट है, 4.6 के आसपास हमारे पास 3 साल का रेट है, अगर आप फिक्स में विश्वास बिलीव करते हैं, नहीं तो वेरिएबल रेट में हमारे पास बहुत अच्छे -8, -9, -1 तक भी आपको हम कोशिश करके दिला सकते हैं रेट। तो आपको सिर्फ मशवरा करना है हमारे साथ, डिस्कस करना है अपनी मॉर्गेज के मतलब कोई भी आपका सवाल हो, अगर आपको रिन्यूअल आ गई है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर बैंक से आपको रिन्यूअल आ गई है, आपको लेटर आ गई है, जो भी आपको रेट्स बैंक ने ऑफर किए हैं लेटर के अंदर, उनको साइन करके साइन बैक राइट अवे कभी मत भेजें। आप डिस्कस करें मॉर्गेज प्रोफेशनल के साथ, जो भी अगर आपके पास कोई और है, कोई और ब्रोकर है, या फिर किसी और दूसरी बैंक के साथ, अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम सेम बैंक के साथ भी आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, अगर आप नहीं बाहर कहीं और जाके करना चाहते। अदरवाइज हम भी आपको सेम बैंक के साथ ही बेहतर रेट ला के दे सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उसका, अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम अगर आपकी बैंक से ही बात करेंगे, दे नो कि ये क्लाइंट ब्रोकर के पास जा चुका है, और ब्रोकर के पास बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारे लैंडर है, कहीं ना कहीं से ये अच्छा रेट ला के उनको दे देंगे, तो हमारी डील जो है वो, हमारी जो मॉर्गेज है वो कहीं और चला जाएगा बिजनेस। तो दे विल डू देयर लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। अगर हम उनसे आपके लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम इसको कहीं और नहीं लेके जा रहे, रिन्यू ही कर लिए मॉर्गेज, सेम सब कुछ रहेगा, पर इनको रेट बेहतर कर दें, क्योंकि ये मेरे पास किसी और लैंडर के साथ बेहतर रेट मैं दिला सकता हूँ इस क्लाइंट को, तो उस केस में यू विल गेट द बेस्ट फ्रॉम द सेम लेंडर एज वेल। तो आपको कोई नुकसान नहीं है डिस्कस करने में, अगर आपका रिन्यूअल आ गया है तो आप डायरेक्ट कभी भी साइन करके मत भेजें, यू शुड शॉप अराउंड, दिस इज द टाइम, क्या बिना किसी पेनल्टी के आप उसको सेम रिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप अगर और आपके पास कुछ कर्जे हैं, कुछ डेट है, कुछ कार लोन है, कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट है, स्टूडेंट लोन है, वो सब हम आपको कंसोलिडेट करके एक बेस्ट रेट कम से कम जो मिल रहा है मार्केट में वो ला के आपको देंगे, उससे आपकी बचत 1,000 से कहीं ज्यादा हो जाएगी।
नंबर, फोन नंबर बता दें अपना,
फोन नंबर भी बताना पड़ेगा माजी भाई,
मैं भाई उसके एक्स्ट्रा चार्ज है, मगर मैं क्या करूं, मैं यू नो व्हाट आई एम इन गुड मूड टुडे।
647-228-1000
जी, हाँ जी,
228-1000
647-228-1000 सब। कोई भी अगर आपने मॉर्गेज का सवाल हो, कोई भी किसी भी किस्म का मॉर्गेज करवानी हो, तो आप 647-228-1000 पर कॉल करें, बड़े बरसों का इनके पास एक्सपीरियंस है, ही विल गाइड यू इन ए प्रॉपर वे, आई नो हिम वेरी वेल फॉर मेनी मेनी ईयर्स। मेरे बड़े बड़े हैं ये, मगर यू नो व्हाट,
क्या भाई भाई से बस 20 साल बड़ा हूँ और माजी भाई रियल स्टेट का और मॉर्गेज का दोनों का मिला के 26 साल का तजुर्बा है।
26
और जी, और अगर आपको किसी ने घर खरीदना है फ्यूचर में, एक महीना, दो महीने, छह महीने, आप कैसे घर के मालिक बन सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको मशवरा दे सकते हैं। आपके कोई भी मसलात हैं, आपकी डाउन पेमेंट का मसला है या इनकम आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली है, कम शो होती है सीआरए के साथ, तो वी कैन प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन, सम सॉल्यूशन कि आप आगे चल के किस तरीके से मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो प्लीज हमसे राब्ता करें 647-228-1000। बहुत शुक्रिया माजिद भाई,
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैरिसन से हमने आपकी बातचीत करवाई। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल एप या साडी वेबसाइट eawaz.com, लोकल नंबर
6478724900। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक्ट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक यू 5196220660 quicktruckcube.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
6477-649-0241। गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर फैमिलीज विद किड्स। अगर आपकी इनकम $60,000 से कम है और आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 से लेकर 60,000 तक की ग्रांट मिल सकती है और ये फंड 3 हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट ग्रांट ऑन्टेरियो, अल्बर्टा और BC प्रोविंस के लिए है। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए शावेज 6477690241 6477690241।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, मल्ट वॉटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स एंटेरियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसेस सागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉस और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। canemsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
ग्रिल इन हट मिसेस सागा में ऑर्डर वाय फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन हट।
BMK proudly brings you Big Pickering Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Midway. Mark your calendars for August 31st and September 1st. The first ever open-air concert with a tribute to the legendary Jagjit Singh by Mozam Ali Khan. Enjoy free parking at admission for sponsorship, booth booking and limited VIP tickets. Contact us at 416-897-1683 or info at bmkevents.com.
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउंस, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन। एंड 4:27 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और शाह साहब कहते हैं भाई कल मैं आपके स्टूडियो में धमाका करूंगा, क्योंकि स्टूडियो में हमारे शाजिया मंजूर मलकू एंड शबनम मजीद और जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट यहां पर मौजूद हैं। किस चीज के लिए? 10 अगस्त का जो एक फंक्शन करा रहे हैं ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड में, उसके लिए जितने आर्टिस्ट यहां होंगे उन तमाम को लेके हमारे स्टूडियो में जरा महफिल जमेगी। नासिर शाह साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम अजय भाई, आपका क्या हाल है और बाजी कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए सर, अब बस दिन तो बहुत कम रह गया, वो हो ही गया मामला समझिए।
देखो सबसे बड़ी जो मुश्किल काम होता है ना वो आर्टिस्ट को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आना, और ये एक चीज इसमें इन्वॉल्व होती है, वो टिकट भेजी तो आर्टिस्ट आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी सरदर्दी होती हैं, वीजा लगवाना, फिर किसी का वीजा रिफ्यूज हो गया, किसी का हो गया, फिर दोबारा अप्लाई करना, ये बहुत सारी हेडिक के बाद जो ये फाइनली होता है। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ऑन एयर शेयर कर रहा हूँ मलकू का, जैसे हमारे आर्टिस्ट उन्होंने पंगा डाला था, हमने मिनिस्टर परमिट लिया, अब मिनिस्टर परमिट क्या होता है ये आसान काम नहीं है। मुझे पता है मैं 3 दिन सोया नहीं हूँ इस चक्कर में ये मेक श्योर करने के लिए भाई हमने जो प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे करने हैं। अब वो प्रोमिस पूरा करने के चक्कर में हमें ये एक होता है ना का मसला बन जाता है भाई हमने एक चीज मुंह से निकाली है उसे पूरी कैसे करनी है। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, ऑलवेज शुक्र अदा करता हूँ और अपनी कम्युनिटी का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। मैं आज जो भी हूँ अल्लाह ताला का खास जो करम है ये मेरी कम्युनिटी और रेडियो साजो आवाज की वजह से आपको मैं बार बार ये कहता हूँ। तो इसी वजह से मुझे आई फील प्राउड मैं आपका एक फैमिली मेंबर हूँ आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं लेकिन अल्लाह ने हमेशा हमारी इज्जत रखी है और जो जो हमने प्रोमिस किए हैं वो कल आपके सामने होंगे और सारे के सारे आर्टिस्ट। और सबसे बड़ी बात जो ये है भी वहां पे हमने कहा कि पाकिस्तान से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, शाजिया मंजूर वो अभी उतर गई हैं और इंशाल्लाह वो हमारे ऑफिस में होंगी आधे घंटे में, और इसके अलावा मलकू, फिर सारा अल्ताफ, शबनम मजीद, जोजिली खान सर सुबह आ चुके हैं, शबनम मजीद सुबह आ चुकी है ऑलरेडी। तो कहने का मकसद सारे लोग आज शाम तक पूरे हो जाएंगे। तो आपने पहुंचना है क्योंकि हमने आपके लिए सारा बंदोबस्त किया है, हमने आपके लिए मेला सजाने जा रहे हैं, मेले को मेले की तरह सजाएंगे। आपको फील होगा या वाकई हम जिस जगह पे जा रहे हैं आपको एक सेकंड फील बोरिंग नहीं होगी, एक सेकंड ऐसा नहीं लगेगा पता नहीं गलत जगह पे आप आ गए हैं। बाकी एक एक चीज की मैं गारंटी कर रहा हूँ, ऑन एयर गारंटी कर रहा हूँ भाई, आप जब आएंगे आपके सामने जब सिंगर परफॉर्म करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर गलती से भी आपने मिस कर दिया ये मेला तो पूरा साल आप अफसोस करते रहेंगे ये मेला मिस क्यों हो गया, क्योंकि इस लेवल का हम करने जा रहे हैं, इससे बड़ा मेला आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, इससे अच्छा सेटअप आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी में रहता हूँ, मुझे पता है कितना खर्चा करते हैं लोग, कौन इसकी पसली है पूरे शहर में इतना खर्चा करे। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है, हम ही ये बेरा उठाते हैं, हम ही ये कोशिश करते हैं भाई चलो अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चले, अपनी कम्युनिटी को प्यार करते हैं हम लोग। अगर फिर भी हमारी कम्युनिटी हमसे नाराज है भाई फिर तो अल्लाह मालिक है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई आपने पहुंचना हमेशा की तरह जैसे आप हमेशा पहुंचे हैं, इसी इस दफा भी आपने पहुंचना। 10 अगस्त का मतलब क्या हुआ, एक दिन रह गया कल का, कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे, परसों 12 से शाम 11 बजे तक नॉन स्टॉप आपको इंटरटेनमेंट मिलेगी। इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने जो प्रॉमिस किया आपको वो एक ही प्रॉमिस किया है भी आपको जो सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, और उसकी वजह से आपकी एक दिन की इनकम इक्वल टू 1 मंथ हो सकती है अगर आप लोग वहां पे आते हैं और स्टॉल लगाते हैं। अभी भी मौका है, आज भी कुछ लोगों ने बुकिंग की है, बाजी आरफा ने एक रेफर किया था, वो उसने स्पेशल इनका नाम लेके बुकिंग कराई है। तो कहने का मकसद है हमने माए बहनों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल की बात कर रहा हूँ सिर्फ $250 रखे हैं। $250 पे आपको ज्वेलरी कपड़े के लिए स्टॉल मिल रहा है और आप आए और एंजॉय करेंगे, ये मैं बार बार ये कहता हूँ। तो आपको कोई भी रिगार्डिंग अगर स्टॉल लगाना है या अभी भी स्पॉन्सर करना, स्पॉन्सर के लिए क्या है, क्यों प्रॉपर्टी एक्सपो भी हो रही है, हलाल फूड फेस्टिवल भी हो रहा है और मेगा मेला भी हो रहा है, 3 चीजें अंडर 1 रूफ हो रही हैं। और प्रॉपर्टी एक्सपो में बाजी आपको पता है माजे भाई बहुत सारे नए इमिग्रेंट्स आए हैं, वो यहाँ पे घर भी बाय करना चाह रहे हैं और मॉर्गेज भी लेना चाह रहे हैं, आपको मॉर्गेज वाले लोग भी मिलेंगे, आपको घर वाले लोग भी मिलेंगे अगर रियल एस्टेट करनी है, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं यही बार बार कहूंगा भी अगर आप ने अगर प्रॉपर इनकम और प्रॉपर आप काम करना चाह रहे हैं, फ्री में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो आपको परसों सैटरडे को पहुंचना है वहां पे ब्रम्पटन फेयर ग्राउंड। ब्रम्पटन फेयर ग्राउंड के बारे में बताऊंगा, ये 410 अगर नॉर्थ की तरफ आपका फेस है, मे फील्ड आएगी, मे फील्ड से आपने लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेते साथ ही वेरी फर्स्ट लाइट जो है वो है हॉट लेक की, हॉट लेक पे आपने राइट लेके साथ ही 1 या 2 मिनट की ड्राइव है लेफ्ट पे आएगा ब्रम्पटन फेयर ग्राउंड, वहां पे हमने स्टैंड भी रखने हैं ताकि आप इजी पहुंच सके। तो आप जरूर आइएगा, अपनी फैमिली को लेकर आइएगा, राइड्स भी है वहां पे बच्चों की राइड्स का बंदोबस्त किया ताकि आप लोग बच्चे आए साथ आपके तो वो भी बोर ना हो, वो भी इंजॉय करें, और साथ अगर आपके वालदैन आते हैं आप अपने माँ बाप को भी लेकर आए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेकर आए, वो भी इंजॉय करेंगे। तो हर तरह का सिंगर है वहां पे, मैं जब भी कोई शो बनाता हूँ माजिद भाई आपको पता है मेरा जो तरीका है काम करने का, मैं हर एज को जेन में रख के काम करता हूँ। मुझे पता है मैं खुद अब सीनियर लोगों में से आ रहा हूं, तो मुझे भी अपनी एज का भी जेन में रखना है, मुझे माजा भाई की एज का भी जेन में रखना है, मुझे अरफाबाजी की एज का भी जेन में रखना है, और मुझे अपने बच्चों की एज का भी जेन में रखना है। तो मैंने हर एज को ये सोच के बनाता हूँ शो, ताकि एक सिंगर भी उसी लेवल के मंगवाता हूँ, ताकि आप हर सिंगर को सुन के इंजॉय भी करें, बच्चे राइड्स भी लें, बच्चे गोलगप्पे खाएं, चाट पापड़ी खाएं, जलेबियां खाएं, गन्ने का रस पिएं, हर वो चीज जैसे मेले में होती है। मेले में ये मैं चाहता हूँ बार बार आप बच्चों को जरूर लाइएगा, क्योंकि एंट्री बिल्कुल फ्री है। एंट्री फ्री होने का मकसद ही, अगर आप 10 मेंबर हैं घर के, तो 10 मेंबर बगैर पैसे के आप एंट्री के वो फ्री रखी हमने, आप बगैर टिकट के आप अंदर आ रहे हो और आप जो है वो एंजॉय कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। अगर आप कोई बड़ा सिंगर जैसे मलकू है, कैलगरी में शो हो रहा है माजा भाई, मलकू की टिकट 200-250 की टिकट बेच रहे हैं, वो एक शो कर रहे हैं मलकू वाला, मलकू का कैलगरी में 250-200 की टिकट बेच रहे हैं। मैंने तो मलकू भी आपको फ्री सुनाने जा रहा हूँ, मैं शाजिया मंजूर को फ्री सुनाने जा रहा हूँ, मैं फिर जोजीली खान को, शबनम मजीद को, सैर अलताफ का एक गाना एक अभी रिलीज हुआ है बंदूक के नाम से, वो भी आपको वो सामने आपकी होंगी। तो ये चीजें, इतने बड़े बड़े सिंगर आपके पास पहुंच चुके हैं, आपने पहुंचना है कल का दिन छोड़ के परसों आपने आना है वहां पे ब्रम्पटन फेक ग्राउंड में। कोई भी अगर आप स्टॉल लगाना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं आपकी इनकम अच्छी हो जाए, एक दिन की इनकम ज्यादा हो जाए, तो आपको स्टॉल बुक कराना पड़ेगा और वकास सईद को कॉल करें 647-712-7000 पे वकास सईद को कॉल करें और आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं और वहां पे आए, पिक्चर्स लें, बड़ी बड़ी सरप्राइजेस मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे लगने वाला। जैसे जैसे आप आएंगे आपको एक से एक बढ़ के सरप्राइज मिलेगा, एक से एक बढ़ के आपको सिंगर मिलेगा। पहुंचना पर शर्त एक ही है, ब्रम्पटन फेयर ग्राउंड आफ्टर टुमारो, ब्रम्पटन फेयर ग्राउंड याद रखिएगा। अब एक दिन रह गया, तैयारी कर लें, मेले में जैसे कपड़े पहनते हैं खूब सज बन के आना, ताकि आप इंजॉय करें और आपके बहुत पुराने दोस्त भी आपको मिलेंगे, बहुत पुराने फैमिली मेंबर्स भी आपको वहां पे मिलेंगे, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, पिछले साल भी ऐसे हुआ था, वो 20-20 साल 10-10 साल बाद लोगों की मुलाकात आपस में हुई। तो यही हम मेला से जाने जा रहे हैं वहां पे ब्रम्पटन फेयर ग्राउंड में, 647-712-7000 जी माजा भाई।
नासिर शाह साहब एंड शाह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मेगा मेला हलाल फूड फेस्टिवल एंड प्रॉपर्टी एक्सपो 2024 बस इस सैटरडे को, मैं डेट नहीं बता रहा हूँ, इस सैटरडे को ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड में 12942 हार्ट लेक रोड कैलाडे में। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वकास सैयद को फोन कर सकते हैं 6477127000। अभी थोड़ी देर बाद फिर इंशाल्लाह जनाब नासिर शाह से बात कराएंगे आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब,
थैंक यू वेरी मच। अभी वो शाजिया जी वो मेरे साथ होगी आधे घंटे बाद इंशाल्लाह, अगर चांस मिले तो 5 बजे हम शाजिया मंजूर को भी लेंगे लाइन पे जी।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया
जी साहब। अब आप तैयार रहिएगा, हम आपको लेके चलेंगे अमेरिका। अमेरिका से हमारे साथ शामिल होंगे जनाब अजीमिया साहब। दो चीजों को हम कवर करना चाहते हैं, अजीमिया साहब हमारे साथ हैं, मैं माफी की ख्वास्तकार हूं कि मियां साहब को इंतजार करना पड़ा। काबिले एहतराम जनाब अजीमिया साहब जंग के साथ वाबस्ता फ्रॉम द डे वन और आज तक कोरेस्पॉन्डेंट हैं जंग के और जियो के इन अमेरिका। अजीमिया साहब सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
I'm fine. मेरा वैसे एक बात है कि मेरी खिदमत का जो दायरा है वो कनाडा अमेरिका दोनों है, लेकिन बहरहाल मैं एक आज सा सहाफी हूँ और जहाँ हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। हुक्म करें, आप कैसी हैं
सर? आपका खिदमत का दायरा कार गो के नॉर्थ अमेरिका में है, मगर नॉर्थ अमेरिका से मुतल्लिक जिसमें कनाडा अमेरिका, चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे वो किसी भी किस्म के मामलात हों, हमारी काउंसलेट से मुतलिक हों, आम पाकिस्तानियों से मुतलिक हों, दुनिया भर के पाकिस्तानी आपको इस अजीम मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान का है उस पर देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जंग में आप पढ़ते भी हैं। मेरा सर दो बातें मैं आपसे कवर करना चाहती हूं, और एक बात तो जाहिर है अमेरिका का इलेक्शन के लिहाज से हम कवर करते हैं। आई विश डोनाल्ड ट्रंप जीते, दो तरह के लोग, और ये मैं आज नहीं कह रही, इससे पिछले इलेक्शन में भी मेरी ख्याल यही था। मगर बिफोर इसके कि मैं आगे की तरफ चलूं, शुक्रिया, बहुत से लोगों ने मेरे फोन के ऊपर भी मुझे मैसेज किया है, मैं उसको भी देख के आपके साथ शेयर कर देती हूं। गुरदेव सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, तुसी मुबारकबाद दी अरशद नदीम दे हवाले नाल, तुसी क्या के चस आ गई, मजा आ गया उन्होंने जितण दा, थैंक यू वेरी मच। सबू आपने भी टेक्स्ट किया, और सबू हमारी टीम की ही रुकन है, वो अलग बात है कि जरा वो मसरूफियत उनकी बहुत ज्यादा है, तो सबू आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी मुबारकबाद। बलजीत जी ताड़ा बहुत शुक्रिया, अकमल आपका बहुत शुक्रिया, दिलावर मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम आपसे मेरी फोन पे बात हुई, आपका बहुत शुक्रिया। सतेंद्र सिंह जी ताड़ा बहुत शुक्रिया। एक और मुझे जो कॉल मिलती है मैं वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊं। कांग्रेचुलेशन 914-6100 कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान ऑन विनिंग गोल्ड इन जेवलन। ठीक, ये तो वो मैसेजेस हैं जिसको मैंने यहां से 1435 कांग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज एंड अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं बताती हूँ कि हम सेलिब्रेट भी करते हैं, और अल्लाह करे कि हम अजीम मियां साहब का, क्योंकि तजुर्बा बहुत ज्यादा है, माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे बेहतरीन क्रिकेटर्स, बेहतरीन प्लेयर्स जिन्होंने अपने दौर में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी, हम बाज़ औक़ात अपने उन मौसमों को भूल भी जाया करते होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। मगर उससे पहले मैं लेकर जाना चाहती हूं कि अमेरिका में जो एक वाक़या हुआ, आसिफ मर्चेंट, पाकिस्तानी शहरी, 45-46 साल की उम्र के हैं, कराची में पैदा हुए थे, उसके बाद ये इनकी दो बीवियां, एक बीवी बच्चे पाकिस्तान में, एक बीवी बच्चे ईरान में, मगर ईरान को रिप्रेजेंट करते हुए यहां पर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानी एक जनरल थे जिनकी असैसिनेशन में सिग्नेचर्स किए थे, मगर ये ख्याल नहीं किया जाता कि डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन में उनका हाथ था, उसमें मैथ्यूज का ही हाथ था, मगर इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियंस का नाम है जिनका नाम को जाहिर नहीं किया गया। अब होता यह है कि जब भी कभी कोई इस तरह का वाकया होता है तो उसमें बाकायदा उस मुल्क की कांस्टेट को इत्तला दी जाती है कि आपके मुल्क का एक शहरी, मगर उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कह दिया है कि गो कि ये पैदा कराची में हुए थे, मगर इन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया था, ईरान भी ट्रैवल किया था, शाम भी ट्रैवल किया था, इराक में भी ये गए थे, और फिर इन तमाम मुल्कों से होते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए अमेरिका आए थे। फिर इतने ही बेवकूफ थे कि वो जिन लोगों को थर्ड पार्टी के तौर पर डील कर रहे थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्हीं के रेफरेंस से जिन लोगों को इन्होंने हायर किया, मतलब इतने ही बिल्कुल ही बेवकूफ के बच्चे थे, वो भी एजेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट आई थिंक इट्स बेटर वी टॉक टू जनाब अजीम मियां साहब। मियां साहब, आसिफ मर्चेंट के बारे में जिक्र हो रहा है, नौजवान है,
मैं भी आपको मुबारकबाद दूं ये अरशद नदीम की, और मुझे इसमें जो सबसे अच्छा पहलू जो नजर आया वो ये कि कच्चे कोठों में एक गांव में रहने वाला जो पाकिस्तानी है उसमें भी जो पोटेंशियल है, हम कब ये इलीट क्लास और ये इस किस्म की जो दर्जा बंदियां हमने अपने मुआशरे में की हुई हैं, इन सब को तोड़कर हम सिर्फ टैलेंट एंड मेरिट पर जो है बात करें, उसकी वजह यह है कि इस बच्चे की जो है कामयाबी ये किसी भी क्रिकेटर से कहीं ज्यादा मुझे इसलिए अजीज है कि ये तनहा इसकी है, कच्चे कोठों में रह के कच्ची पक्की रोटियां और सालन जो है वो चंगेर में रख के खाने के बाद अगर ये शख्स जो है किसी किस्म की कोई रू रियायत या किसी किस्म की सहूलतों के बगैर ये चीज अचीव करता है, तो इससे हमारे हुक्मरानों को, हमारे मुआशरे के जितने मतलब के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो मैरिट पर जाए, इस दर्जा बंदी पर न जाएं कि कौन कितना कमाता है या कितना प्रिविलेज है। हमारे क्रिकेटर्स को जो प्रिविलेज दिए गए हैं उसके नतीजे में हमें मायूसी के अलावा आजकल कुछ नहीं मिला, माजी में बहुत कुछ मिला, माजी में हॉकी में मिला, लेकिन हमने कभी किसी भी कौम की तरह, जब देखें आपके यहाँ जो है वो आइस हॉकी है, आइस हॉकी जो है वो आपका एक कौमी खेल है, उसमें मतलब के सब लोग अपना बनाते हैं, हमारे यहाँ भी ये देखें कि डाइवर्सिफाइड होने की बजाय हम या तो क्रिकेट के फोबिया में हैं एक जमाना था कि जब हम हॉकी फील्ड हॉकी के मतलब के फोबिया में थे और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हम जहां फोकस करते हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा जो है मुझे जो खुशी है वो ये है कि गरीब का बच्चा कच्चे कोठे से बारिश की में छत टपकते हुए कमरे में से निकल कर वो जाता है पेरिस जाता है और आपकी कौम के लिए हमारी कौम के लिए जो है वो उनका सर फख्र से बुलंद करता है। और ये उसकी सिर्फ सोलो है, ना सिर्फ ये बल्कि वो और बाबे इकतदार जो क्रिकेट पर या दूसरे खेलों पर या अपनी अयाशियों पर जो करोड़ों रुपए मतलब खर्च करते हैं, काश के इस किस्म के टैलेंट को डेवलप करने पर भी वो अपने वसाइल लगाते हैं।
बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की। आपने जब अरशद नदीम के बारे में बात की तो मुझे बेख्तियार मेरा ख्याल स्कर्दू के उस लड़के की तरफ गया। आपकी याददाश्त और आपकी ज्यादा बेहतर है मुझसे। स्कर्दू का ये लड़का जो स्कीइंग के लिए दरख्तों की लकड़ियां इस्तेमाल करके पांव के नीचे रस्सियों से बांध के स्कीइंग करता था और फिर इसने भी ओलंपिक्स में शरीक हुआ था। वसाइल की गरीब लोगों में कमी है मगर टैलेंट की उस मुल्क में कोई कमी नहीं है। अरशद नदीम की बिल्कुल जी मेरे पास लेटेस्ट पिक्चर आ गई है जिसमें अरशद नदीम मेंस जेवलिन थ्रो न्यू रिकॉर्ड जो है 92.97 नदीम ए और उसके साथ पाकिस्तान का ये हुआ। जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमेरिका और आसिफ मर्चेंट के बारे में बात करिए, मगर क्योंकि हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने स्कर्दू के उस लड़के का भी तذکرہ करना चाहा। मैं एक और जिंदगी का ख्वाब जो आज चिराग गुल हुआ है उसका भी जिक्र करना चाहती हूं। विनेश भोगाट ये हिंदुस्तान की एक हैवी वेट लिफ्टर। आप इमेजिन कीजिएगा हर प्लेयर का इन गेम से पहले सुबह में वेट किया जाता है और इसके लिए वजन जितना था 50 किलोग्राम वजन रिक्वायर्ड था। शी वॉज ओनली 100 ग्राम्स मोर देन 500। अनफॉर्चुनेटली इसने तीन मैचों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा, हिंदुस्तान से इसका ताल्लुक है, तीन मैचों में इसने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और ख्याल किया था कि ये पहली अच्छा इसने एक 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 टूर्नामेंट जीता भी था, एक जीता भी था और वो जाहिर है वो गोल्ड मेडल की के अहल करार पाई थी। मगर जो सेकंड पार्ट में इनका वजन 50 किलोग्राम होना था मगर 50.100 ग्राम, पता नहीं सोना तोलने वाली मशीन पे बिठा लिया इसको, तो वो जब वो कहते हैं 100 ग्राम इनका वेट ज्यादा हुआ तो इनको ना अहल करार दिया गया, जिसकी वजह से वो जो फर्स्ट राउंड में वो क्वालिफाई की थी उसमें भी डिस्क्वालीफाई हुई। कहते हैं शी क्राइड अ लॉट और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रेसलिंग का ख्वाब जो 2001 से लेकर 2014, उन्होंने कहा माँ मैं तेरी मकरूज रहूंगी, मुझे माफ कर देना। और इन्होंने विनेश भोगाट पेरिस ओलंपिक्स में इनका कम अज कम चांदी का तो लाजमी इनको अवार्ड मिलना मेडल मिलना था, मगर आज उन्होंने रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली। शी क्राइड अ लॉट, बहुत रोई वो उस बात पे, मुझे बहुत दुख है।
अरबा जी जब सड़कों पे सो के पुलिस की मार, इंडियन पुलिस की मार खा के भी जिसमें जो इतना जज्बा हो और गुर्बत की इन लकीरों को छूने के बावजूद जो है कामयाबियों के जो आलमी मतलब स्टैंडर्ड हैं उनको मीट करने की गुंजाइश हो, तो फिर ये जो दुनिया हर जगह ये कहती है कि हम अफ्रीका में इसलिए गए हैं कि वहां पावर्टी है और पावर्टी को हम जो है उसका एलिवेशन हम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं। क्योंकि जो शख्स या जो भी चाहे वो इंडिया से हो कि पाकिस्तान से हो कहीं से भी हो, अगर इस किस्म का टैलेंट जो आया जिसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल हैविंग नथिंग एट ऑल से आकर यहां तक अगर वो मिलता है तो उसको अगर 10 ग्राम पर रिजेक्ट किया जाता है तो वाकई ये आपने सही कहा, ये ट्रेजेडी।
वेरी सैड सर, वेरी सैड। और देखिए वजन भी कोई इतना ज्यादा नहीं, इट इज जस्ट 100 ग्राम्स मोर देन रिक्वायर्ड। और यहां पे उन्होंने ये कहा है कि कॉमनवेल्थ नेशनल चैंपियनशिप, आर्मी चैंपियनशिप और ओलंपिक्स में असूल मुख्तलिफ हुआ करते हैं, कहीं कहीं छूट भी दे दी जाती है, लेकिन ओलंपिक्स में कितने ग्राम की गुंजाइश रखी जाती है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं 100 ग्राम्स के डिफरेंस पे। एंड शी वेरी टैलेंटेड एथलीट, वेरी सैड।
دنیا میں ابھی تک جو ہے نا ڈسکریمنیشن ختم نہیں ہوا، ہم نے اس کو بڑے خوبصورت رنگ دے دیے ہیں، لیکن جس قسم کا اگر یہی بات کسی یورپین کی ہوتی تو یقین جانے اب تک جو ہے طوفان اٹھ گیا ہوتا اور کہتے کہ جی 10 گرام کو معنی نہیں رکھتے، مشین ممکن ہے یہ خراب ہے، دوسری مشین پر اس کا وزن کیا جائے اور اس کو جو ہے کنڈون کیا جائے، کیونکہ یہ اتنے نیچے کے اسٹینڈرڈ سے یہ آئی ہے، جہاں سے اٹھنے والے کے لیے دنیا میں وہاں کی کوئی لوکل سطح پر کوئی امید نہیں ہوتی، اگر وہ عزم لے کر انٹرنیشنل مطلب کہ چیمپئنس شپ تک آئی ہے اور پرفارم بھی کر رہی ہے اور اس کمی کے ساتھ بھی پرفارم کر رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ عالمی ضمیر جو ہے اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔
بہت شکریہ یہاں سے نکل کے عظیمیہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے۔ میں آنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے ایک شخص جو کہ کراچی میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے روابط ایران کے ساتھ اور ایران کے ذریعے انہوں نے یہاں چند شخصیات کے گو کے نام تو نہیں بتائے گئے ان کی اسیسینیشن، بٹ انفارچونیٹلی جن لوگوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے وہ تمام کے تمام سی آئی اے کے ایجنٹس تھے۔ فرمائیں گے جناب کچھ آصف مرچنٹ کے بارے میں۔ اور نارملی
مجھے جو ہے عارفہ اللہ کے فضل سے اس نوعیت کے مقدمات جو ہیں آج سے نہیں 1988 اور بلکہ اس سے بھی پہلے سے جو ہے ان کو یہاں امریکہ میں کور کرنے کا مجھے موقع ملا، مثلا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مطلب کا معاملہ تھا، اس سے پہلے آپ کے ٹورانٹو ہی میں ایک ارشد پرویز تھے جنہیں جو ہے وہ فلاڈلفیا میں ارسٹ کیا گیا تھا، اس وقت پاکستان ابھی اپنے نیوکلیئر پلان کی تیاریاں کر رہا تھا، تو اس سلسلے میں تو ان سے بھی میں جا کر، بلکہ وہ اگر وہاں ٹورانٹو میں ہیں تو انہیں یاد ہوگا کہ میں نے ان سے جا کر نہ صرف یہ ایز اے نیوز جرنلسٹ آن دا بلاک، میں نے جا کر جیل کے اندر ملاقات ایسے آدمی سے کی تھی اور جیل کی اتھارٹیز نے مجھے فیسلیٹیٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ ٹیررزم کا دور آیا تو اس میں بھی میں نے متعدد مقدمات کا کیے، مجھے دعوت ملی کہ بھئی میں گوانٹانامو بے جاؤں، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط عائد کی گئی تھی اس میں میری پریس کی بطور صحافی کہ میری آزادی جو ہے اس کے اوپر یہ تھا کہ مجھے جو ہے کسی نہ کسی کو پہلے اسٹوری دکھانی پڑے گی، اور پھر اور دوسری بات یہ کہ وہاں جو قیدی ہیں میں ان کے قریب کوئی نہیں جاؤں گا بلکہ دور سے ان کو دیکھوں گا، تو میں نے کہا اس قسم کا ڈسٹنٹ قسم کا جو ہے وہ معائنہ یا مشاہدہ کرنے کے بعد میں اسٹوری لکھوں اور وہ پہلے سے میں کسی کو دکھاؤں۔ الحمدللہ یہ کام نہ میں نے پاکستانی حکام کے ساتھ کیا ہے اور نہ یا میں نہیں گیا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیے کہ انڈائٹمنٹ ایک اپنی جگہ ہے کہ بھئی الزام ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے، لیکن میں باقی چیزوں پر بھی آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستانی کاؤنسلیٹ جو نیو یارک میں ہے اس کو فون کیا، میں نے کہا جی کیا اپ ڈیٹ ہے، آپ یہ مائنڈ کریں کہ یہ 12 جولائی کو اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے، یعنی ٹرمپ سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا یہاں سے، اور اس کو کب سے ٹریس کیا جا رہا تھا وہ الگ بات ہے، تو یہاں کی جو انڈائٹمنٹ اور یہ جو اس قسم کے پروسیجرز ہیں اس سے الحمدللہ بطور صحافی کے جتنی مجھے کو واقفیت اپنے طور سے ہونی چاہیے وہ ہے، میں وکیل نہیں ہوں، وکیل حضرات ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بہتر بتائیں، تو میرا سوال اس میں یہی ہے کہ اگر وہ پاکستانی نیشنل، اگر تو وہ امریکن سٹیزن ہے اور امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہے تو پھر تو مجھے یہ نہیں پوچھنے کا کہ ابھی پاکستانی کاؤنسلر کو کیوں اطلاع نہیں، ورنہ قانون کے مطابق جو ہے اگر کسی پاکستانی نیشنل کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ کینیڈا میں ہو چاہے یہاں ہو، وہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس مطلب کہ شہری کے پاسپورٹ کے حوالے سے اس حکومت کو بتاتی ہے کہ فلاں نام کا آدمی جو ہے اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، اس پر یہ الزامات ہیں اور یہ پاکستانی شہری ہے اور اس کا یہ ڈیٹیلز ہے، پھر پاکستان کی جو ذمہ داری ہے وہ سفارتی ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک سفارت خانے کا آفیشل جو ہے وہ جا کر بندے کو ملاقات کرے، شناخت کرے اور اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس ہیں اس کو ویریفیکیشن کرے، اور یہی نہیں بلکہ اگر وہ پکڑا گیا ہے تو یہ میکسیکو سارے ممالک جو ہے انٹرنیشنلی یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو کاؤنسلر سروسز دیتے ہیں جس میں بعض دفعہ وکیل بھی دیا جاتا ہے، مثلا ریمنڈ جو پاکستان میں جو ہے ریمنڈ ڈیوس کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، وہ جب گئے تو ان کو جو ہے باقاعدہ امریکن مطلب جو کاؤنسلر سروسز تھی اس کا ایکسس دیا گیا، امریکی سفارت خانے کے لوگ جاتے تھے ملتے تھے، وکیل انہوں نے ہائر کر کے دیے اور وہاں پر وہ باقاعدہ اس کا جو بھی کیس تھا وہ لڑا گیا، یہ تو ہو گیا امریکن۔ پاکستانی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی جی، ان کے لیے جو ہے $2 ملین جو ہے اس وقت کی حکومت نے باقاعدہ دیا، وکیل کو یہاں ہائر کیا گیا،
हुसैन हक्कानी यहाँ पर उस जमाने में एम्बेसडर थे, हुसैन हक्कानी को मैंने खुद न्यूयॉर्क में आकर उस मुकदमे की तरफ भी देखा, जाते देखा। काउंसिल जनरल जो बाद में न्यूयॉर्क में बने उनको बाकायदा असाइन किया गया कि वो मुकदमे की पैरवाई को जो है वो देखे। अब यहाँ पर ये है और ये नहीं है, इमरान चौधरी से आप भी वाकिफ हैं जो आपके यहाँ काउंसिल जनरल रहे,
बहुत खूबसूरत इंसान
जनाब। वो जिस वक्त वाशिंगटन में मुतय्यन थे और 9/11 का दौर था, सैकड़ों पाकिस्तानी जो है यहाँ न्यूयॉर्क से लेकर और कैलिफोर्निया तक की जेलों में थे, वो शख्स तने तनहा जो है एक एक बंदे के पास जाता था, विजिट करता था, उसके कागज वेरीफाई करता था और उसके बाद तस्दीक करता था कि वो पाकिस्तानी है या नहीं है। क्योंकि कोई भी मुलजिम जिसको आप अरेस्ट करते हैं वो कुछ भी क्लेम कर सकता है कि मैं टंबकटू का शहरी हूं। तो अब टंबकटू का शहरी होने की तस्दीक जो है वो टंबकटू वाले करते हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक 12 जुलाई का है और हमारी वजारत खारजा जो है वो ये कहती है जी हमने मीडिया के जरिए हमें इत्तला मिली है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, नंबर एक, और अगर आपको इन्फॉर्म किया तो आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं, और तीसरी बात यह कि आप फिर भी तबसरा क्यों नहीं कर रहे कि ये कौन शख्स है, क्या है, नादरा का कार्ड उसका होगा, उसका पासपोर्ट होगा। ये सारी चीजों पर हम गफलत इसलिए करते हैं कि हम डर जाते हैं कि ये केस जो है बड़ा अहम केस है, बड़ा हाईलाइटेड केस है, हम इसमें क्या करेंगे। हमारे सफारतकारों को जो है इस किस्म की दीवारों के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है, दे आर हेयर टू सर्व द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड द पाकिस्तानी सिटीजन, और वो यहाँ आते भी इसी के लिए कि पाकिस्तान के मफादात की तर्जमानी करें। तो ये चीज को हालांकि ना इस शख्स को मैं जानता हूँ ना इसके पूरे बैकग्राउंड से वाकिफ हूँ जो पकड़ा गया है, लेकिन मेरे पास इसकी पूरी इंडाइटमेंट और जो कागजात जो अदालत में फाइल किए गए हैं, बाकी जो सारे सिलसिले हुए हैं, जो कहानी उसमें जो बयान की गई है, जो इस्तगासा का यानी प्रोसिक्यूशन का जो मौकफ है वो सारा मैंने पढ़ा है। और उसके बाद मैं पढ़ने के बाद भी ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ठीक है ये शहरी है, पहले तो आप ये तय करें कि ये पाकिस्तानी शहरी है या नहीं है। नंबर दो ये कि फिर उसके बाद आपका ये भी फर्ज बनता है हुकूमत पाकिस्तान का कि वो ये देखे कि जो कुछ इल्जाम इस पर लगे हैं उसकी क्या चीजें हैं, क्या सबूत हैं, क्या वो कवायद हैं, चाहे वो मुकदमे के दौरान हो या उससे पहले हो। लेकिन यहाँ खामोश क्यों कि पाकिस्तान का इस वक्त आपको सुन के ये भी हैरत होगी कि पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है मसूद खान के जाने के बाद बिल्कुल खाली पड़ा और एक जूनियर सिफारतकार जो है डॉक्टर अपना फरिया बुक्की वो इस वक्त कायम मुकाम उसकी इंचार्ज हैं, जबकि वहां पर इससे ऊपर मसूद खान, फिर उनके जो नायबीन हैं फर्स्ट सेक्रेटरी सेकंड सेक्रेटरी, उनमें से कोई भी नहीं है। तो सफारत खाना ऐसे वक्त में कि जब आप अमरीकन इमदाद और अमरीकी ताउन और इस सब की जो है गुनगा रहे हैं बैठकर, चाहे वो मियां शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, जो भी वजीर आजम हमारे मुल्क का या हुक्काम है या मोफा जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स के तर्जमान है, वो वहां बैठकर पाक अमरीका ताल्लुकात जो है उनके गुण गाते हैं लेकिन सफारतखाना खाली रखते हैं। तो मैं क्या कहूं कि मेरे
क्या वजह है कि सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन अमरीकी सफीर की नामजदगी नहीं हुई और अपॉइंटमेंट नहीं हुई, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट?
अपॉइंटमेंट तो हो चुकी है और वो बड़े रीजनेबल आदमी है, उन्हें भी मैं जानता हूँ जो मतलब के आ रहे हैं, वो यहाँ पर हेड ऑफ चांसलरी पहले रह के गए हुए हैं, अच्छे सब मतलब समझदार बुर्दबार आदमी है, अमेरिका का तजर्बा भी उनको है। लेकिन उसके अलावा जो है आरफा जी बात ये कहने की है कि इस वक्त यहाँ पर इंतखाबात हैं, इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन है और पाकिस्तान को जो है वो सफारत, ठीक है इलेक्शन कैंपेन में आप हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन बात यह है कि पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अलावा और जगहों पर भी हमें अपने ताल्लुकात रखने होते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस रखनी होती है। फिर आप ये देखें कि हमारे मुखालिफान जो है मुखालिफिन जो है उनकी लॉबी यहाँ बड़ी इस वक्त तेज है। मैंने पहले भी यही लिखा था जिस वक्त भाई ये 368 जो कांग्रेस मैनों ने रेजोल्यूशन पास किया था उस पर मैंने लिखा ये पाकिस्तान की सफारतकारी जो है ये फेल हुई है। हालांकि जो मसूद खान साहब हैं मेरे आज के नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जाती तौर से उनका बाहमी एहतराम के साथ जो ताल्लुक रहा है कुछ 23-24 साल का ताल्लुक है, जब वो यूनाइटेड नेशन में भी थे, इधर भी थे, चाइना भी गए हैं, ही इज एन अकम्पलिश डिप्लोमैट। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क की जो है अमरीका में नुमाइंदगी मौसर नहीं हुई, सफारती नाकामी पहले भी हुई है अब भी हुई है और पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त बेचैनी के हैं उसका नतीजा ये है कि अब सफारती सतह पर भी हम जो है बहुत ही पीछे रह रहे हैं और न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि गफलत का शिकार हो रहे हैं और ये कोई अच्छे आसार नहीं।
बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान अलाउ करता है ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है, ड्यूअल और ट्रिपल सिटीजनशिप भी हो सकती है, आई कैन बी अमेरिकन, कनेडियन एंड पाकिस्तानी। क्या आसिफ मर्चेंट साहब पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैदा हुए, कराची में पले बढ़े, मगर इनकी एक वाइफ ईरान से भी हैं, क्या इनके पास ईरानियन सिटीजनशिप भी थी?
पॉसिबल, पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इनके पास, लेकिन अभी तक जो है इसमें इंडाइटमेंट में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उनके पास ईरानियन सिटीजनशिप है। ये जरूर मैंने सुना है कि भाई उनके वहां भी बीवी बच्चे हैं और पाकिस्तान में भी उनके बीवी बच्चे हैं, पाकिस्तान में उनके दो घर भी हैं, गाड़ियां भी हैं, सारे सारे सिलसिले हैं, और ये बैंक में रह भी चुके हैं, वहां पर बैंक में रहे थे और बैंक में से जो है इनको किसी इल्जाम की वजह से जो है वहां से निकाला गया था उसके बाद, लेकिन ये कारोबार भी करते हैं। अच्छा, बजाय ये भी है कि जो कुछ उसमें गुफ्तगू की गई है इंडाइटमेंट में, वो उसमें ये बताया गया कि ये कुछ सूती कपड़े का कारोबार भी करते थे। तो देखिए, इसमें होता यही है कि बाज जगह देखिए, अभी रशियन और अमेरिकन इनके जो है प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ है
जी सर,
उसमें जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के और दूसरे कुछ साथी भी आए हैं, ठीक है। अब वो वहां पर किस रूप में थे, किस स्टेटस पर था, ये सारी चीजें जो है आमतौर से इस किस्म के सेंसिटिव मुकदमे में बहुत सारी चीजें जो है बयान की जाती हैं, बहुत सारी नहीं की जाती। आपके यहाँ अभी एयर होस्टेस का एक मसला हुआ था रिहाई का, उसमें भी सारी तफसील, मैंने काफी तफसील पढ़ी है उसकी, लेकिन सारी तफसील अभी भी उसके अंदर नहीं है कि क्या हुआ और कौन कौन से और लोग भी जो थे ऑन द ग्राउंड जो उसमें सारे काम कर रहे थे। तो ये होता है कि मुकदमे में जो प्रोसिक्यूशन है वो सिर्फ वो चीजें पेश करता है जो उनको सूट करती हैं, लेकिन हमारे सफारतकारों का ये फर्ज बनता है कि वो उसके उसकी तस्वीर के दूसरे पहलू जो हैं, पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसमें देखें। मेरा इतराज सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं जाकर पूछा, मेरा इतराज ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हम आलमी सतह पर इस वाक्य की वजह से जो बदनाम पाकिस्तानी शहरी हुए हैं उसका सद्देबाब करना जो है और उसको उसका तदारुक करना, अगर वो वाकई मतलब है कि जो सूरत हाल है उस सही सूरत हाल को तक पहुंचना जो है ये पाकिस्तानी सफारतकारों का फर्ज था। उन्होंने जब तक ये अखबारात में और आलमी प्रोपेगेंडे में ये सारी चीज नहीं आम हो गई तब तक उनके खामोश बैठने का कोई जवाब इसलिए नहीं है कि बहरहाल वो पाकिस्तान के तनख्वाह याफ्ता, हलफ याफ्ता और उसके साथ साथ पाकिस्तानी सिटीजन जो है उनके खादिम होने का जो है अहद कर यहाँ पर अपॉइंट किए गए।
बहुत शुक्रिया अजीम मियां साहब। अमेरिका के इलेक्शन अपने अरूज पे हैं और कमला हैरिस के ज्वाइन करने के बाद और अपने वाइस प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस करने के बाद दो पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया है जनाब डोनाल्ड ट्रंप में और कमला हैरिस में। अमेरिका आज भी इसने अपने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो नए चीफ आए हैं हमास के, जिनको नया चीफ बनाया है, उनके लिए खुली बयान कर दिया है कि हमने इनको भी मार देना है और इसराइल जो है वो तैयार, हमास तैयार हो जाए। यानी इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इसराइल के नए सरबराह यहिया उनको निशाना बनाने का ऐलान किया है आज इसराइल ने। याहिया जो है जाहिर है वो ये सिर्फ इतना कहते हैं कि जंग बंदी अगर हो इस कंडीशन पे हो सकती है कि अमेरिका असला देना बंद कर दे। अमेरिका लगातार, अब अमेरिका ने फिर असला इसराइल को देना शुरू कर दिया है। आप क्या फरमाएंगे कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट कमला हैरिस, बिकॉज बरतानिया में आपको पता ही है कि शदीद माराधाड़ी शुरू हो गई, बहुत सी मस्जिदों के पे भी उन्होंने चढ़ाई की है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट मुजाहरे भी हो रहे हैं। ये मुजाहरे शुरू होने की वजह सबसे बड़ी कि लोग गजा के लिए, जिसमें ज्यूइश लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। अमेरिका ने अपनी इमदाद का इजहार कर दिया, कमला हैरिस एक पांव के ऊपर कोई और बयान देती हैं, दूसरे कदम के ऊपर कोई और बयान देती हैं, मुस्लिम वोटर्स के सिमत पे जा रहे हैं।
देखिए, बात यह है कि चाहे कमला हैरिस विन करें या ट्रंप विन करें, अब तक इसराइल की बात अगर आप करते हैं, इसराइल के साथ जो है अमेरिका का बॉन्ड जो है वो अनशेकेबल अभी तक है। चाहे बाइडन जीते चाहे ट्रंप जीते, ये सब
جو ہیں اس معاملے میں اسرائیل کے معاملے میں ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. اونلی جس کو موڈیلٹیز کہتے ہیں موڈیلٹیز کا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کا یحییٰ کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ نہیں, وہ تو نیتن یاہو نے بالکل یہ کہا ہوا کہ جب تک جی اس کا حماس کا کوئی ایک بندہ بھی جو ہے ہمارے مطلب دسترس میں نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مطلب صاف کر لیتے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ جنگ کو اپنی جنگ کو اس حد تک بڑھا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک حماس ہے تو حماس کے نام پر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے معصوم بچے بھی مارے جاتے ہیں, عورتیں بھی جو نہتی عورتیں ہیں وہ ماری جاتی ہیں, نہتے بچے مارے جاتے ہیں, خوراک لیتے ہوئے لائنوں میں لگ کر جو ہے پانی لیتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. حالانکہ وہ حماس نہیں ہے, وہ تو ایک عام شہری ہیں اور جنیوا کنونشن سے لے کر آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وغیرہ جو ہے ان سب کی رائے بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اسٹریٹجی ورلڈ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک ایران کا معاملہ ہے. اگر یہ وار یا یہ کانفلکٹ ایران تک ایکسٹینڈ ہوا تو پاکستان کی سرحدیں ایران سے کوئی زیادہ دور نہیں ہیں, اور پاکستان میں جو کیاس اور کنفیوژن کی جو اس وقت ابتدا ہے جو اس وقت جو کنفیوژن ہے اور جو لیک آف ڈیسیژن ہے, جو حکومت کی مطلب بے بسی ہے اور جو فوج کو جس طرح سے اس ساری چیزوں میں داخلی معاملات میں انوالو کر لیا ہے, ان سب کے لیے جو ہے سب کے سب عمران خان بھی ہوں گے اور شہباز شریف بھی ہوں گے, یہ سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں, پاکستانی عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہے. ابھی تک آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں کے درمیان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ آپ چور ہیں آپ چور ہیں آپ چور ہیں آپ چور ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غریب آدمی جو سڑک پہ مطلب اس وقت بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا یا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. جو بات کر رہا ہے اس کے نام پر بات کر رہا ہے لیکن اپنے اقتدار کی بات کر رہا ہے. مجھے اس بات پر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک پارٹی نہیں تمام کی تمام پارٹیاں چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں جہیں جہاں بھی ہیں ان کو اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری سرحدوں پر کتنے خطرات ہیں. دیکھیے طالبان آپ کی طرف ایک طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس طرف سے اگر ایران سے بات کہیں خدا نہ خاصہ بات بڑھتی ہے تو ہم آئیں گے. آلریڈی آپ جیروشلم پوسٹ اور یہ سارا جو مطلب ہے کہ اپنا اسرائیلی میڈیا ہے جب آپ اس کو پڑھیں تو اس میں سے پاکستان کو کس طرح انوالو کرنے کی جو بو ہے وہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چونکہ ایران کا ساتھی ہے لہذا پاکستان بھی جو ہے وہ ایکولی مطلب اسی کیٹیگری میں آتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کہاں پر جا رہے ہیں, کشمیر ہے باقی چیزیں ہیں, تو آپ اپنے آپ کو پہلے سنبھالیے بطور قوم کی اپنے سروائیول اندرونی سروائیول اور بیرونی سروائیول اس کا کام کیجئے, اس پہ توجہ دیجئے پھر باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. اس سے کوئی ہوشیار نہیں ہے معذرت کے ساتھ, چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں سب کے سب نہ صرف غفلت میں ہیں سب اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے یہ کہنے میں کوئی نان پارٹیزن کے طور سے مجھے یہ کہنے میں کوئی مطلب کہ امر مانے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان کے اپوزیشن بھی دونوں کے دونوں جو ہیں اپنا مائنڈ جو ہے وہ صرف کرسیوں پر لگائے بیٹھے.
اور تیسری پارٹی جو جس کے ہاتھ میں ڈوریاں ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. بائی دی وے میں یہاں
وہ ذرا مجھے بھی بتائیے نا تاکہ میری گائیڈنس تو ہو نا.
سر آپ ابھی میرے منہ سے ذرا نہ کہلوائیں, آپ کو بھی پتہ ہی ہے آج انہوں نے سعودی عرب والا بیان دے دیا, انہوں نے کہا کہ علماء جو ہے نا وہ درمیانے ہو جائیں درمیان میں آ جائیں فرقہ پرستی کو ختم کر دیں. اینی ویز انفارچونیٹلی میں یہاں پہ کل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دس از امیرکا اپنے رائٹس کے لیے صحیح کرتا یا غلط کرتا ہے دے نو. آج میتھیو ملر نے یہ بات کیا ہے کہ نو دس از آر اسٹیٹ, ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے. اور آصف مرچنٹ کے ملوث ہونے کے الزام کے بارے میں ہم نے اسلام آباد سے کوئی بات چیت نہیں کی, دس از بٹوین اس اینڈ آصف مرچنٹ. ویئر ایز ان پاکستان ریمنڈ ڈیوس پاکستان سی آئی اے کا ایجنٹ پاکستان میں دو بندے مارتا ہے, میرا اپنا جنرل آصف جناب پاشا جنرل پاشا آپ سوچئے گا کبھی باہر کورٹ میں اندر جاتے تھے کبھی باہر جاتے تھے اور ایسے بھگایا تھا انہوں نے وہاں سے. بہت شکریہ جناب.
بلکہ مجھے یہ بھی کہنے دیں جس کو آپ نے تیسری پارٹی کا حوالہ دیا بالکل ان کو بھی چاہیے, یہ سب کا فرض ہے ہم سب کا فرض ہے
کہ ملک کی سروائیول اور مطلب کے لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو دھیان دیں. اس وقت جو ہے اقتدار کے لیے لڑائیاں لڑنے کا یا قوت یا اس پہ جو ہے قوت سے قبضہ کرنے کا یہ ماحول بالکل نہیں ہے, ملک خطرے میں ہے.
بہت شکریہ جناب عظیم میاں صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی. عظیم صاحب آپ سے دوبارہ بھی ملاقات رہے گی بڑے دنوں کے بعد, لگتا ہے میں 50 سال کے بعد آپ سے بات کر رہی ہوں.
نہیں 65 ایئرز ہوئے ہیں ابھی.
عظیم صاحب ہماری طرف سے
عظیم صاحب جس کی جو بڑی مانی خیز ہوتی آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے پر تھی وہ ہنسی میں نے سن لی ہے, ان کو میرا صرف سلام
پہنچا. وعلیکم السلام.
سر میری خواہش ہے, دیکھیں جی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں, اسنیک ان دا گراس از آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اس پہ ٹرسٹ کروں گی, رادر دین ایک آدمی
نہ بھی کریں. لیکن انہوں نے صرف جو ہے ٹرمپ کے مطلب کہ ٹرمپ کی حمایت کرنے پر جتنی مانی خیز ہنسی پہنچی ہے اس کے سارے تیر میری طرف آ گئے.
عظیم میاں صاحب ہماری طرف سے بھی آپ سلام قبول فرمائے سر.
بڑی مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے.
تھینک یو ویری مچ سر. جناب عظیم میاں صاحب کا بہت شکریہ. فرام نو ویئر آئی ریکویسٹڈ ہم, سر آپ نے ایکسپٹ کیا میری درخواست کو اور آپ میرے ساتھ شامل ہوئے. کوئکلی میں ذکر کرنا چاہتی ہوں راجہ بادشاہ کا, آج وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پائے مگر کل راجہ بادشاہ آل اسٹیٹ انشورنس کے ساتھ. راجہ بادشاہ نے دو تین ٹپس دی ہیں, آپ دو غلطیوں کی وہ بھی لے سکتے ہیں یعنی چھوٹ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کے بچوں کا ریزلٹ بہت اچھا ہے دیٹ کین ہیلپ ٹو ڈیکریز یور انشورنس اماؤنٹ. راجہ بادشاہ آل اسٹیٹ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کو تعاون دیا ہے ڈاکٹر نازیہ رحمان نے بھی, فیملی ڈینٹسٹ ہیں, کراؤنز بریجز ڈینچرز. بائے دا وے اگر آپ سینئرز ہیں تو آپ کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ اکائی فری. اور آپ ڈاکٹر نازیہ رحمان, اگر آپ کے بچے ہیں, آپ چھوٹے بچے ہیں تو بھی آپ کا اکائی فری ہے بیکاز اسمائلز اونٹیریو کور کرے گا. ڈاکٹر نازیہ رحمان کے دو کلینکس ہیں 150 یلو ایونز پولی وارڈ پہ. آپ ڈائبیٹک ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, آپ کے پاس انشورنس ہے, آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے, کراؤنز بریجز ڈینچرز ایون لیٹسٹ آپ نے امپلانٹس بھی کروانے ہیں تو ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100 ان کا جو لیٹسٹ کلینک ہے دیٹ از آن مسز ساگا روڈ اینڈ فائنینشیل ڈرائیو پہ. ڈاکٹر نازیہ رحمان آپ کو یاد رہے گا نا 9058721100 مطلب یہ نہ سوچے کون ہے آپ, یہ دیکھیں اس کا کوالٹی آف ورک کیا ہے. آپ کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں ہم پائل جیولرز پہ, پائل جیولرز جس کو رن کر رہے ہیں ہمارے اپنے اسلم بھائی. اسلم بھائی آج سے نہیں یعنی آئی اسٹارٹیڈ وین آئی سے کہ میرا تقریباً 28 سال 29 سال کا کریئر ہے 770 پہ, تو آئی ووڈ سے کہ اسلم بھائی کا بھی 22-23 سال سے کم, جب سے میرا خیال ہے ٹورنٹو میں ہے بس سونے میں ہی تلتے چلے آ رہے ہیں. اور جیولری کا اگر ذکر کیا جائے تو ہمیشہ پاکستان, انڈیا, سنگاپور, سعودی عربیہ, دبئی کی جیولری کا ذکر کرتے تھے, مگر اسلم بھائی نے اپنے جیولری پائل جیولرز پہ ٹرکش سٹائل کی, بیکاز جس وقت کھانے جاؤ تو ٹرکش ریسٹورینٹ پہ جانے کو دل کرتا ہے, آپ جیولری پہنے تو دیٹ از اے ٹرکش جیولری. ہمارے ہاں شادیوں پہ دلہے کے لیے پلیٹینم رنگز استعمال کی جاتی ہیں, یا دلہن کو اگر آپ نے گفٹ میں انگیجمنٹ رنگ دینی ہے, ڈائمنڈ رنگ دینی ہے, سب کچھ موجود ہے پائل جیولرز پہ. پائل جیولرز برامپٹن میں ہے, نارتھ پارک اینڈ ایئرپورٹ پہ. آپ ایئرپورٹ پہ گزر رہے ہو نا تو گولڈی کھومن پلازا مڑ کے دیکھو نا ذرا, ادھر ادھر سجے پاس دیکھا جی, مطلب کی گئی ہے ویسٹ والے دیکھا جی, یو کی ناٹ مس اٹ, تم نظر دکھائے گا پائل جیولرز. یا آیا نا وہی جتھے اپنا نو فریل بھی ہے تے پائل جیولرز. اچھا بھائی السلام علیکم. لو اسلم بھائی تو گئے چلے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک اور چیز यार मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, आई वॉज वेरी, ये जो विनेश भुगाट है ना, इसके बारे में आपको याद होगा हिंदुस्तान में लास्ट ईयर हंगामे फूट पड़े थे। एक उनकी बॉक्सर, एक उनकी हैवी वेट चैंपियन थी जो वोकल थी, और उसने कहा था कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, वहां जो खवातीन हैं, लड़कियां जो हैवी वेट चैंपियंस हैं, वो सेक्सुअली असॉल्ट करते थे उनको, ठीक है। और जाहिर है ये बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, जब से इन्होंने इस गेम को ज्वाइन किया था, विनेश भोगाट इनका नाम है, वो कहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर जो ब्रज भूषण सिंह हैं, उससे मुतालिक। अब साहब ये यही विनेश भोगाट थी जिन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि वो जो यानी ये वो पहली खातून है जिन्होंने पिछले साल इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज किया था, और उन्होंने एक नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बेशुमार